नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरा प्रदेश फिर कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में, अत्यधिक ठंड से जनजीवन प्रभावित। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की, प्रदेश के किसान भी होंगे लाभान्वित। प्रदेश में रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीनों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर बनेगी समिति। और एनडीए घटक दलों के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की आज से शुरुआत, बगहा में हो रही है पहली बैठक। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। आज सुबह से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना समेत कई स्थानों से हल्की बूंदाबांदी के भी समाचार हैं। अत्यधिक ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान तेजस, राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित 11 रेलगाड़ियां विलंब से पटना पहुंची। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से सभी 12 उड़ानें रद्द रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में और गिरावट आएगी।
मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य तथा दक्षिण पश्चिमी के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे छाए रहने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में 8वीं वर्ग तक की कक्षाओं में पठन पाठन 17 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। वहीं खगड़िया और सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को 16 जनवरी तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुरुआत की है। श्री गोयल ने वर्चुअल माध्यम से बोर्ड का उद्घाटन करते हुए कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी का उत्पादन करते हैं और विश्व की 70% हल्दी भारत में पैदा होती है।
40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सत्ता साकार हुआ है। मैं सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योगों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है, ये आगे चल के आपके काम में करेगा।
प्रदेश के समस्तीपुर जिले में भी हल्दी का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। स्थानीय हल्दी उत्पादकों ने केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीनों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। ये समिति पारदर्शी निर्णय लेकर विवादों को समाप्त करेगी। इसमें निबंधन के अलावा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में वर्ष 2017 में अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर जमीन का निबंधन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पंचायत भवन के निर्माण का अधिकार एक बार फिर मुखिया को देने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह दायित्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन LAEO के पास था। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अभी LAEO को 2000 ग्राम पंचायतों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। 2165 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। शेष 2453 पंचायत भवनों का निर्माण मुखिया कराएंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सब्जी उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। वेजफेड की समीक्षा के दौरान उन्होंने ये बात कही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 150 विपणन केंद्र खोले जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी के स्टॉल पर सब्जी के आउटलेट की व्यवस्था करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एनडीए घटक दलों के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की आज पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से शुरुआत हो रही है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि मिशन 2025 में 225 सीट जीतने का अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत पहले चरण में बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी और शिवहर में एनडीए का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत 27 जनवरी से भोजपुर जिले से होगी। बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार ये भर्ती केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा के साथ ही वाहन चलाने का परीक्षण देना होगा। इसमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि 8 साल के बाद एक बार फिर गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार की झांकी दिखेगी। उन्होंने कहा कि झांकी का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। कल मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी के सहयोग से महाकुंभ में बहुभाषाई सुगमता का तकनीकी प्रबंध किया है। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषणी के जरिए 11 विभिन्न भाषाओं की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल खोया पाया समाधान के जरिए लोग अपनी भाषाओं में खोई या पाई गई वस्तुओं का विवरण दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं आसान संवाद के लिए वास्तविक समय में दर्ज की गई विवरण का अनुवाद भी हो रहा है। इसके जरिए अधिकारियों के साथ निर्बाध संवाद भी स्थापित हो रहा है। AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट कुंभ सहायक को महाकुंभ के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। कुंभ सहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को मार्गों की सही जानकारी प्रदान करने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के अनुभव को भी बेहतर बनाना है। भाषणी मोबाइल ऐप की वार्तालाप सुविधा के जरिए श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ सहज संचार की सुविधा भी मिल रही है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी ललन प्रसाद का नामांकन वैध पाया गया है। कल नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद उनकी जीत की विधिवत घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि विधान परिषद की 1 सीट के लिए हो रहे चुनाव के लिए ललन प्रसाद के अलावा किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मधुबनी जिले में कमला रिवर फ्रंट, बाबा विदेश्वर स्थान और शांतिनाथ महादेव मंदिर के पर्यटकीय विकास की आधारशिला रखी। श्री मिश्रा ने बताया कि बाबा विदेश्वर स्थान झंझारपुर के लिए 5.1 करोड़ रुपए तथा शांतिनाथ महादेव मंदिर झंझारपुर के विकास के लिए 3.42 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ड्रोन की खरीद पर किसानों को 60% या अधिकतम 3,65,000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा। श्री पांडे पटना के ज्ञान भवन में ड्रोन की उपयोगिता पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती में ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए समृद्धि के नए द्वार खोल रहा है। प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप को जानने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की ओर से सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे राजेंद्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट RMRI की देखरेख में किया जा रहा है। इसके लिए पटना और मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। RMRI के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे ने बताया कि यह सर्वेक्षण 1 साल तक चलेगा। इससे मलेरिया के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर राज्य के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी मजदूर काम करने के लिए आते हैं, उन स्थानों का चयन सर्वे के लिए किया गया है। रेलवे ने आज से 31 मार्च तक मोकामा और बख्तियारपुर के बीच विशेष एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है। यह ट्रेन मोकामा से रात के 12:20 पर रवाना होगी और 1:30 पर बख्तियारपुर पहुंचेगी। इधर जम्मू तवी स्टेशन का पुनर्विकास कार्य होने के कारण रेलवे ने पटना और जम्मू तवी के बीच चलने वाली अर्चना एक्सप्रेस को 18 जनवरी से 4 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया है। पटना जिले के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से साइबर अपराधियों ने 1,38,00,000 रुपए ठग लिए। वहीं इसी जिले की कंकड़बाग और जक्कनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के ललमनिया थाना क्षेत्र के घुरमोहना गांव में पुलिस ने लगभग 5,00,000 रुपए मूल्य की नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पटना जिले की पुलिस ने रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र से 4,00,000 रुपए मूल्य के अवैध लॉटरी टिकट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, जम्मू कश्मीर POK के बगैर अधूरा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की दर नए सिरे से तय होगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 10,470 शिक्षकों का तबादला, खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ। हर माह 5 से 8 दिन के बीच लिस्ट जारी होगी। प्रभात खबर ने मंत्री संतोष से लॉरेंस के नाम पर मांगी 30,00,000 रुपए की रंगदारी को बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरा प्रदेश फिर कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में, अत्यधिक ठंड से जनजीवन प्रभावित। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की, प्रदेश के किसान भी होंगे लाभान्वित। प्रदेश में रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीनों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर बनेगी समिति। और NDA घटक दलों के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की आज से शुरुआत, बगहा में हो रही है पहली बैठक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। We'll be right back.